8 जनवरी दिन मंगलवार और आज की खबरें लेकर दिन भर कार्यक्रम के साथ हाजिर हूँ मैं सारिका सिंह। सामान्य वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने संबंधी बिल लोकसभा में पेश, चर्चा जारी।
जो एससी एसटी और ओबीसी को आरक्षण व्यवस्था है उसको छेड़े बिना अतिरिक्त 10% आरक्षण का प्रावधान दिया जाएगा।
सवर्णों को 10% आरक्षण सिर्फ एक चुनावी जुमला, कहा दलित नेता जिग्नेश मेवानी ने, सुनाएंगे उनसे खास बातचीत।
एक बात मैं साफ तौर पे मानता हूँ कि एक नए किस्म का चुनावी जुमला है।
ओके।
सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया, विपक्ष ने कहा सरकार को मिला सबक। और बताएंगे आपको भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती क्यों है जरूरी, लेकिन उससे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधुवासिनी से। भारत सरकार ने सामान्य वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण देने से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने बिल पेश करते हुए कहा कि मंडल आयोग ने भी इसकी अनुशंसा की थी। वहीं लोकसभा में चर्चा के दौरान भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बिल को राज्यों से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने इस विधेयक का समर्थन किया है, जबकि तमिलनाडु की अन्ना द्रमुक ने इस विधेयक का विरोध किया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन ने अमरीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन की सीरिया में लड़ाई लड़ रहे कुर्द लड़ाकों की सुरक्षा की गारंटी की मांग को अस्वीकार्य किया है। तुर्की की संसद को संबोधित करते हुए अर्दोआन ने कहा कि अमरीका का ये मांग करना कि तुर्की अमरीका समर्थित कुर्द लड़ाकों की सुरक्षा की गारंटी दे एक गंभीर गलती है। अर्दोआन ने कहा
ve bu konuyla ilgili olarak John Bolton çok ciddi bir yanlış yapmıştır.
इस संबंध में जॉन बोल्टन ने गंभीर गलती की है और अगर कोई और भी ऐसा सोचता है तो वो गलती कर रहा है। हमारे लिए इस बिंदु पर समझौता करना संभव नहीं है। सीरिया में जो भी आतंकी गलियारे का हिस्सा है उन्हें जरूरी सबक मिलेगा। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी या PYD या इस्लामिक स्टेट के बीच कोई फर्क नहीं है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन के शब्द। जॉन बोल्टन इस समय तुर्की की राजधानी अंकारा में ही हैं। वो राष्ट्रपति ट्रंप के सीरिया से अमरीकी बलों को वापस बुलाने के फैसले पर चर्चा करने के लिए तुर्की आए हुए हैं। एक अमरीकी प्रवक्ता ने इस वार्ता को सार्थक बताया है। जर्मनी की संघीय पुलिस ने बताया है कि रविवार को गिरफ्तार किए गए एक युवक ने देश के राजनेताओं का डेटा हैक करने और उन्हें सार्वजनिक करने की बात स्वीकार की है। जिन सैकड़ों लोगों का निजी डेटा चुराया गया है उनमें राजनेता, पत्रकार और तमाम चर्चित हस्तियां शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि युवक ने सारा डेटा अकेले ही हैक किया और अभी उसके किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े या प्रेरित होने के संकेत नहीं मिले हैं। हैकर एक नाबालिग है और उसे सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा नहीं माना जा रहा है। जांचकर्ता उसके घर से बरामद किए गए तकनीकी उपकरणों की जाँच कर रहे हैं। जर्मनी के मुख्य अभियोजक ने बताया
Er hat die gegen ihn erhobenen Vorwürfe umfassend eingeräumt und ist geständig. Er hat
उसने अपने ऊपर लगे आरोप स्वीकार कर लिए हैं और वो जांच में भी मदद कर रहा है। उसे हिरासत में रखने की कोई वजह नहीं थी, इसलिए उसे 7 जनवरी को रिहा कर दिया गया और वारंट भी खारिज कर दिया गया। उसके फ्लैट से जब्त किए गए कंप्यूटरों और बाकी डेटा उपकरणों की अभी जाँच चल रही है। जर्मनी के मुख्य अभियोजक के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। ऑस्ट्रेलिया ने वादा किया है कि वो इस्लाम त्याग कर थाईलैंड पहुंची सऊदी अरब की युवती की शरण की याचिका को स्वीकार करेगा। फिलहाल थाईलैंड में अस्थायी निवास परमिट पर रह रही इस युवती का कहना है कि अगर वो वापस सऊदी अरब लौटी तो उसका परिवार उसकी जान ले लेगा। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी संस्था इस मामले को देख रही है। डेनमार्क का कहना है कि यूरोपीय संघ ने यूरोप में रह रहे ईरान के असंतुष्ट लोगों की हत्या की साजिश रचने के आरोप में ईरान पर प्रतिबंध लगाए हैं। डेनमार्क का आरोप है कि बीते एक साल में वहां ईरानी कार्यकर्ताओं की हत्या का प्रयास किया गया। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं सारिका सिंह। कार्यक्रम की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। केंद्र सरकार ने लोकसभा में आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने के लिए लोकसभा में बिल पेश किया है। इस पर चर्चा जारी है। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रही हैं सर्वप्रिया सांगवान।
निवेदन करता हूं कि संविधान 124वां संशोधन विधेयक 2019 पर विचार किया जाए।
संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत की ओर से लोकसभा में पेश इस बिल को कई विश्लेषक अगले आम चुनाव के लिए मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं और विपक्षी दल सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बिल में सामान्य वर्ग के आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। बिल पर चर्चा की शुरुआत करते हुए केंद्रीय मंत्री गहलोत ने स्पष्ट किया कि आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी।
वर्तमान में जो एससी एसटी और ओबीसी को आरक्षण व्यवस्था है 49.5%, उसको छेड़े बिना अतिरिक्त 10% आरक्षण का प्रावधान शिक्षण संस्थाओं में और सेवाओं में दिया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री गहलोत ने यह भी कहा कि अब तक जो तबके आरक्षण के दायरे से बाहर हैं, उन सभी को इसका लाभ मिलेगा।
मुस्लिम धर्मावलंबी भी है, ईसाई धर्मावलंबी भी है और जिस धर्म के लोग इस देश में रहते हैं और एससी एसटी ओबीसी की आरक्षण प्रणाली से बाहर हैं, वो सब लोग इस प्रावधान का लाभ ले सकेंगे।
विपक्षी दल कांग्रेस ने इस बिल को जेपीसी के पास भेजने की मांग उठाई। कांग्रेस नेता केवी थॉमस ने कहा कि उनकी पार्टी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का समर्थन करती है, लेकिन इस बिल को लेकर जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। थॉमस कह रहे थे कि हम बिल का समर्थन करते हैं, लेकिन जिस तरह से आप इसे ला रहे हैं, आपकी नीयत पर सवाल उठते हैं। जल्दी में फैसला मत कीजिए, इसे जेपीसी के पास भेजिए। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बिल के समर्थन में बोलते हुए सभी पार्टियों से इसका समर्थन करने को कहा। उन्होंने कांग्रेस को उसके घोषणा पत्र की याद भी दिलाई।
हमारी जो गरीब की गरीबी हटाने के लिए जो कमिटमेंट और निष्ठा है, वो केवल मैनिफेस्टो तक सीमित होगी या पार्लियामेंट के कानून के माध्यम से उसकी शिक्षा और रोजगार तक जाएगी? ये कांग्रेस पार्टी और इनके साथियों की आज परीक्षा है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जो मैनिफेस्टो में लिखा है उसका समर्थन कीजिए और बड़े मन के साथ कीजिए।
अन्ना द्रमुक पार्टी ने बिल के औचित्य पर सवाल उठाए। पार्टी नेता तंबी दुरे ने कहा कि उनकी पार्टी बिल के समर्थन के बारे में तभी सोच सकती है जब तमिलनाडु में आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 69% करने को लेकर बिल पास किया जाए। उन्होंने सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए।
When the government is having so many programs to uplift the economically weaker section, then why you want a reservation for that? If you fail your program, then only you are coming for reservation. That means all your programs what you announced, it's not properly implemented. That is why the people are still economically poor. I'm telling.
तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि उनकी पार्टी बिल का समर्थन करती है। उन्होंने ये भी कहा कि बिल को लेकर भ्रम बना हुआ है कि ये बेरोजगार लोगों की मदद के लिए है या फिर 2019 चुनाव में लाभ हासिल करने के लिए।
We become in a dilemma that whether the bill is really placed to solve the problem of the unemployed youth.
एनडीए में शामिल शिवसेना और लोक जनशक्ति पार्टी ने भी बिल को समर्थन देने का ऐलान किया है। अभी बिल पर बहस जारी है। बिल पास होने के लिए लोकसभा में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी।
इस बिल से जुड़े अपडेट के लिए आप आ सकते हैं bbchindi.com पर। और सवर्णों को 10% आरक्षण को लेकर सरकार और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं। कोई इसे चुनावी स्टंट कह रहा है तो कोई इसे समर्थन दे रहा है। दलित नेता जिग्नेश मेवानी का कहना है कि वो ना इसके समर्थन में है ना विरोध में। उनसे बात की बीबीसी संवाददाता विनीत खरे ने।
एक बात मैं साफ तौर पे मानता हूं कि एक नए किस्म का चुनावी जुमला है।
ओके।
क्योंकि प्रैक्टिकली कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में इस वक्त पे हमारे मुल्क के संविधान में जो प्रोविजन है उसके मुताबिक ये बात टिक नहीं सकती लीगली। इवेंचुअली ये जब एपेक्स कोर्ट के सामने जाएगा, उसकी डिवीजन बेंच के साथ सामने जाएगी या एक से ज्यादा जजूस की बेंच में जाएगा, तो ये बात टिकेगी नहीं। और सवाल ये होता है कि ये बात लीगली कानूनन तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनली टिक सकती नहीं, इस बात से पूर्णतः वाकिफ होने के बावजूद ये जुमला लेकर मोदी जी आए हैं, उसका एक ही मतलब निकलता है, अपीजमेंट किया जाए कुछ तबकों का, जैसे कि जाट है, मराठा है, गुर्जर है, पटेल है, जो डिमांड करते रहे, तो उनको एक लॉलीपॉप दिया जाए कि कल को यदि ना टिके कानूनी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनली, तो कह सकते हैं हमने तो ट्राई किया ना, हम तो देना चाहते थे ना, सुप्रीम कोर्ट ने ना बोल दिया।
ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये मुझे बताएं आप।
इसके बारे में मेरा कोई ओपिनियन नहीं है।
क्यों?
हमारे संविधान के अंदर इस बात की कोई प्रोविजन नहीं है। हमारे संविधान के निर्माता जो थे विजनरी लोग थे, ठीक है, तो उनको जिस हिसाब से आरक्षण देना था उन्होंने दिया है।
ये थोड़ा मेरे लिए नई बात है, आपका इस पे कोई विचार नहीं है, कोई टेक नहीं है? क्यों टेक नहीं है? नहीं होने का भी तो कारण, अरे
नहीं
तो उसको थोड़ा हल्का ना करें।
मैं फ्रेंकली आपको कहता हूं, हर एक मुद्दे पे, हर एक चीज में आपका कोई पोजीशन हो ही, ऐसा मेरा पोजीशन नहीं है।
मायावती जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें उन्होंने दो तीन बातें कही हैं इस पर, उसी बात पे उन्होंने कहा है कि चुनावी स्टंट है, राजनीतिक छलावा है, लेकिन उसका उन्होंने समर्थन किया है ना। रामदास अठावले जी हैं, उन्होंने समर्थन किया है। उदित राज हैं, हालांकि दोनों बीजेपी से जुड़े हैं, लेकिन दोनों ने समर्थन किया है।
शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी तबकों को जो आरक्षण अवेलेबल है, ईमानदारी के साथ बहुत ही ऑब्जेक्टिवली देखा जाए, इस मुल्क में उसका ट्रू स्पिरिट के साथ कभी भी इंप्लीमेंटेशन हुआ ही नहीं है।
लेकिन इंप्लीमेंटेशन तो इस देश का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, इंप्लीमेंटेशन तो किसी चीज का 100% नहीं हुआ है,
तो इसी का भी नहीं होगा, तो इसमें से ज्यादा निकल कर कुछ आने वाला नहीं, खास करके तब जब सवाल ये कि रोजगार ही नहीं है, तो मैं आरक्षण का सर्टिफिकेट लेकर क्या करूंगा?
नहीं तो रोजगार का एक मुद्दा है, पिछले 4 साल से आरोप लगे हैं मोदी सरकार पर कि वो रोजगार जनरेट नहीं कर पाए हैं।
इसी मुद्दे लेकिन से ध्यान भटकाने के लिए कभी मंदिर मस्जिद आता है तो कभी ऐसे जुमले आते हैं।
लेकिन इसमें जॉब्स के अलावा एजुकेशन, हायर एजुकेशन में भी आरक्षण की बात कही गई है।
हाँ वो ठीक है, नहीं की गई ऐसा नहीं है, लेकिन मूलतः तो वो अपने रोजगार के साथ, लोग बेसिकली जाट, गुर्जर, मराठा, पटेल, ये सब जो आंदोलन हुए उसका जो 90% पार्ट है वो तो इसी डिमांड के साथ खड़ा हुआ है कि इस आरक्षण के चलते हमको भी रोजगार मिले।
लेकिन आप अगर कह रहे हैं कि आपका कोई विचार
नहीं है, मैं आपको दोबारा कहता हूँ मेरी पोजिशन एक कि ये आरक्षण का जो अनाउंसमेंट हुआ उसके हम विरोध में नहीं है। दो, इस आरक्षण के अनाउंसमेंट के चलते इस वक्त एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो रहा है,
ठीक है।
तीन, कल को होगा तो हम अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन भी रखेंगे,
ठीक है। कल को होगा वो
हाइपोथेटिकल बात है, वो भविष्य के गर्भ में
है ना,
इस बात पे नहीं है। चार, रोजगार नहीं है तो इस आरक्षण से ज्यादा कुछ निकल कर आएगा नहीं, इस बात से मैं सवर्ण समुदाय के युवा साथियों को अवगत करना चाहता हूं।
आप कह रहे हैं कि आप विरोध में नहीं हैं, तो आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि आप समर्थन में हैं?
मैं विरोध में भी नहीं हूं।
नहीं, तो आप कह रहे हैं कि कुछ, समर्थन में
कुछ है। प्रोएक्टिव समर्थन में भी नहीं हूं।
खबर सीबीआई से जुड़ी, जिसे लेकर आज कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा को उनके पद से नहीं हटाया जाना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने से पहले पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अरुण जेटली ने कहा कि यह फैसला सीवीसी की सिफारिश पर किया गया था।
That the government had taken this action of sending two senior officers of the CBI on leave on the recommendation of the Central Vigilance Commission.
सरकार आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने के अपने फैसले का बचाव कर रही है, तो विपक्षी दलों ने अब इसे लेकर सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये सरकार के लिए सबक है, वहीं वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि ये आलोक वर्मा के लिए अधूरी जीत है।
इट्स अ केस ऑफ पार्शियल विक्ट्री फॉर श्री आलोक वर्मा इन द सेंस दैट इट हैज ही हैज बीन रिस्टोर्ड बट अनफॉर्चुनेटली एंड स्ट्रेंजली ही हैज बीन रिस्ट्रेंड From taking major policy decisions.
हाल ही में सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और ब्यूरो के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच विवाद सार्वजनिक होने पर सरकार ने पिछले साल 23 अक्टूबर को दोनों अधिकारियों को छुट्टी पर भेजने का फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद अब आलोक वर्मा प्रशासनिक फैसले तो ले सकेंगे पर नीतिगत फैसले नहीं ले सकेंगे। इस फैसले के बारे में मैंने बात की अपने सहयोगी पंकज प्रदर्शी से।
देखिए सारिका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई के जो प्रमुख आलोक वर्मा हैं, जिस तरह उनको हटाया गया था उसमें प्रक्रिया का सही तौर से पालन नहीं किया गया, ये कहते हुए उन्हें बहाल तो कर दिया गया है सारिका। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई वो नीतिगत फैसला नहीं ले सकते, प्रशासनिक फैसला ले सकते हैं, लेकिन वो नीतिगत फैसला क्या नहीं ले सकते हैं, प्रशासनिक फैसला क्या ले सकते हैं, ये बड़ी ही कन्फ्यूजिंग स्थिति है, बड़ी असमंजस की स्थिति है कि उनको कितने, अब आपको पता ही भी है कि वो कितने दिन तक सीबीआई के निदेशक के पद पर रहने वाले हैं, और इस स्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहाल करने का फैसला किया है तो वो क्या कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है।
यही सबसे बड़ा सवाल है कि इसी महीने तक उनका कार्यकाल भी है और फिर वो नीतिगत फैसला ले भी नहीं पाएंगे, तो उनको बहाल करने के मायने क्या हो सकते हैं अभी, क्योंकि विपक्ष इसे अपने तरीके से देख रहा है।
देखिए, विपक्ष तो सरकार को घेरने की कोशिश करेगा ही सारिका, और कई विपक्षी नेताओं ने कहा भी है कि ये मोदी सरकार की हार है, ये बहुत बड़ा झटका है। अगर उस रूप में देखें तो सरकार के लिए वाकई ये झटका तो है ही, क्योंकि सरकार ने अपने फैसले को कोर्ट में काफ़ी डिफेंड किया था। अब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने फैसले का बचाव करते हुए ये कहा है कि सीवीसी की सिफारिश पे हमने ये किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो चयन समिति है जो सीबीआई निदेशक की बहाली करती है, उसी चयन समिति को सीबीआई निदेशक को हटाने का भी अधिकार है। तो उस चयन समिति में चीफ जस्टिस भी हैं और नेता प्रतिपक्ष जो इस समय कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो तीन लोगों की समिति है जो सीबीआई निदेशक के नाम पर मुहर लगाती है और वही हटा सकती है, उनको सुप्रीम कोर्ट का कहना था।
अब बात आज हुई भारत बंद की। देश भर के कई ट्रेड यूनियंस ने मिलकर दो दिनों का देशव्यापी बंद की घोषणा की। बंद के पहले दिन यानी आज इसका मिला जुला असर दिखा। ट्रेड यूनियनों का आरोप है कि केंद्र सरकार की नीतियां श्रमिक विरोधी हैं। उनका आरोप है कि उनकी न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, निजीकरण से रक्षा जैसी मांगों को सरकार अनसुना कर रही है। इसे लेकर सेंट्रल ट्रेड यूनियन से जुड़े लोगों ने बंद का आह्वान किया, जिसमें देश भर के किसानों के शामिल होने की भी बात कही गई। केरल, कर्नाटक, गोवा, बिहार, राजस्थान, पंजाब से लेकर मेघालय और मणिपुर तक इसका असर दिखा। हालांकि ज्यादा जगहों पर बंद का कुछ बड़ा असर नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में कई जगहों से हिंसक झड़प की खबर आई। बीबीसी संवाददाता अमिताभ भट्टासाली ने बताया कि कहीं पथराव तो कहीं पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई।
देखिए, स्वाभाविक जनजीवन तो मतलब कि चलता रहा सुबह से, हालांकि सुबह करीब 4-5 बजे के बाद से करीब 9-9.30 बजे तक कई जगह पर बंद के समर्थनकारियों ने रेल और रास्ता रोको किए हैं। इसके लिए कुछ ट्रेन और देर से चली है, पर उसके बाद से हालात स्वाभाविक हो गया था और रास्ते में भी कुछ लोग धरने पे बैठ गए थे, वामपंथी समर्थक, तो उसको भी समझा बुझा के कई जगह लाठी चलानी पड़ी पुलिस को, तो हटा दिया गया। और स्कूल और बाकी सरकारी दफ्तर ये स्वाभाविक रहा यहाँ पर एक ही ये जरूर है कि इंडस्ट्रियल इलाके में, खासकर जो दक्षिणी बंगाल जूट इंडस्ट्री है, उस पे ये बंद का असर काफी दिखने को मिला। वहाँ हजारों के तादाद में वर्कर्स आज शिफ्ट में ज्वाइन नहीं किए, फैक्ट्री में गए नहीं, और दूसरे फैक्ट्रीज में भी वामपंथी समर्थक जो श्रमिक है वो भी फैक्ट्री गए नहीं आज। तो ये रहा मोटे तौर पे बंद का असर। और जो मैं बोल ही रहा था कि कई जगह पर हाथापाई हुई है पुलिस के साथ और तृणमूल कांग्रेस के कर्मियों के साथ भी, और आसानसोल में पुलिस को लठी चलानी पड़ी सीपीएम समर्थकों के ऊपर, और बारासत इलाके में उत्तर 24 परगना में एक दुखद घटना घटी है। वो एक स्कूल बस में जिसमें स्कूल के बच्चे सवार थे, उस पर भी पथराव हुआ, तोड़फोड़ किया गया उस बस को। तो यही रहा आज दिन भर की घटनाक्रम।
मुंबई में बंद का आम लोगों पर असर पड़ा।
जी, मुंबई पर जो असर है, क्योंकि बहुत ही देखने को मिला पूरे मुंबई के रास्तों पर, क्योंकि बेस्ट जो है, जो बस सर्विस है, अगर रेलवे के बाद माने तो मुंबई की लाइफलाइन है। करीब 25 लाख मुंबईकर जो है वो हर रोज एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बेस्ट बसेस का इस्तेमाल करते हैं, और वो सारी यानी करीब 3200 जो बसेस हैं वो आज रास्ते से बाहर थी, तो उसका असर दिखाई देने मिला। ज्यादातर जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनको बहुत खास कर परेशानी हुई। मुंबई के ट्रैफिक जो है वो वैसे अगर बाकी जो प्राइवेट व्हीकल्स चलाते हैं उनके लिए अच्छा रहा, क्योंकि ये बसेस हमेशा होती है बेस्ट बसेस रास्ते पर और ट्रैफिक हो जाते हैं, तो उनके लिए एकदम रास्ते जो है वो पूरे बिना ट्रैफिक के उनको आज मिले। लेकिन बेस्ट बसेस नहीं है वो देखने को मिली। बेस्ट के जो सारा स्टाफ है, 33,000 स्टाफ है उनका, वो सारे लोग जो है वो आज स्ट्राइक पे चले गए, इंडेफिनेट स्ट्राइक है। उनका ये कहना, जो बड़ी मांग है कि उनकी सैलरी जो है इनकी वो बढ़ाने के लिए उनकी मांग है, उसके साथ कुछ न्यू वेज एग्रीमेंट जो है वो चाहते हैं। तो ये डेलिब्रेशन बहुत सालों दिनों से चल रहा था, लेकिन आज जो है वो उन्होंने तय किया कि नहीं, जो मांग नहीं रहे हैं बेस्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तो फिर उन्होंने स्ट्राइक पर जाने की कोशिश की। जो हमारी जानकारी है तो बेस्ट भवन जो है, जो हेडक्वार्टर्स है, वहां पे अभी तक डिलीबरेशन चर्चा जो है वो चल रही है, मनाया जा रहा है कर्मचारियों की वो वापस आए, क्योंकि मुंबई के लिए एक बहुत अहम सर्विसेज जो है वो बेस्ट देती है। तो हालांकि अब तक कोई हल निकल नहीं पा रहा है, लेकिन आज पूरा दिन देखे तो मुंबई की यातायात पर बेस्ट के बसेस ना होना, इसका बहुत बड़ा असर आज दिन भर देखने को मिला।
इस बंद को 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों का समर्थन हासिल हुआ तो इसमें 20 करोड़ कर्मचारियों के शामिल होने की बात कही गई। बात अफगानिस्तान की, जिसके बुनियादी ढांचे को बेहतर करने और उसकी मदद के लिए भारत अब तक अरबों रुपए खर्च कर चुका है, लेकिन इसके बदले भारत को क्या कुछ मिलता है? क्यों भारत अफगानिस्तान में पैसे लगा रहा है? क्यों जरूरी है भारत के लिए अफगानिस्तान? सुनिए बीबीसी संवाददाता मानसी दास की पड़ताल।
योर सफरिंग इज अवर पेन, योर ड्रीम्स आर अवर ड्यूटी, योर स्ट्रेंथ इज अवर बिलीफ, योर फ्रेंडशिप इज अवर ऑनर।
ये शब्द दिसंबर 2015 में अफगानिस्तान की संसद का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहे थे। जिस अफगान संसद का उद्घाटन उन्होंने किया वो भारतीय मदद से बना है, और इस भवन के एक ब्लॉक का नाम भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर है। 2001 में जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार का पतन हुआ, तब भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में सहयोग की नए सिरे से शुरुआत की। 2002 में भारत ने अफगानिस्तान के लिए $2 अरब के सहयोग की घोषणा की थी। अफगानिस्तान के नवनिर्माण में विभिन्न परियोजनाओं के जरिए धन लगाने वाली सबसे बड़ी क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भी भारत को देखा जाता है। 2011 के भयंकर सूखे से जूझ रहे अफगानिस्तान को भारत ने 2.5 लाख टन गेहूं दिया था। हेरात में सलमा बांध भारत की मदद से बना, जिसे भारत अफगानिस्तान फ्रेंडशिप बांध का नाम दिया गया। अब तक की जानकारी के अनुसार भारत अफगानिस्तान में $2 बिलियन यानी $139 अरब का निवेश कर चुका है। इतने बड़े निवेश के बदले भारत को अफगानिस्तान से क्या मिल रहा है, और भारत के लिए क्यों अहम है अपना पड़ोसी? दक्षिण एशिया मामलों के जानकार कमर आगा कहते हैं कि इसमें दो चीजें हैं जिन्हें समझना जरूरी है।
पहली बात तो ये कि हमारे बहुत हिस्टोरिकल टाइज हैं, प्री इस्लामिक, और हमारा ये पड़ोसी मुल्क होता था। नंबर दो ये है कि जो बिगड़ते हुए हालात हैं उसमें अगर अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी आती है, रूल ऑफ लॉ लगता है, तो मैं समझता हूँ भारत के लिए नहीं बल्कि उस पूरे खित्ते के लिए एक अच्छी बात होगी। और पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रहती है कि अफगानिस्तान में बल्कि इनस्टेबिलिटी रहे, अगर अमन शांति होगी और वहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट होगी तो वो अफगानिस्तान के हितों में काम करेगी, पाकिस्तान के लिए नहीं करेगी।
वहीं बीबीसी अफगान सेवा के सहायक संपादक दाऊद आजमी कहते हैं कि अफगानिस्तान के अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों में कभी न कभी तनाव आए हैं, लेकिन भारत के साथ उसके संबंध हमेशा मधुर रहे हैं।
इंडिया और पाकिस्तान के साथ टेंशन है और दुश्मनी है, इस हवाले से भी अगर अफगानिस्तान इंडिया के साइड पर हो तो फिर पाकिस्तान आइसोलेट हो जाएगा और पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ेगा।
कमर आगा कहते हैं कि इस मामले को समझने के लिए अफगानिस्तान में तालिबान की भूमिका को समझना बेहद जरूरी है, और ये भी हमें समझना होगा कि इस पूरे क्षेत्र में शांति के लिए अफगानिस्तान में अमन होना भारत के राष्ट्रीय हित में है।
अगर वहाँ पे तालिबान जैसी हुकूमत आ जाती है तो भारत के लिए ये बड़ी मुश्किल बात हो जाएगी। यहाँ पे मिलिटेंसी पूरा खत्ता जो है वो इनस्टेबल हो जाएगा, तो इसलिए हमारे लिए वहाँ पे अमन शांति कायम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें $3-4 बिलियन का अगर खर्चा भी होता है तो कोई बड़ी बात नहीं, और इससे हमने बहुत वहाँ पे अच्छी गुडविल भी कमाई है।
लेकिन भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती को लेकर चर्चा का एक विषय चाबहार बंदरगाह परियोजना भी है, जिसमें भारत ने काफी निवेश किया है। इसे लेकर भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भी चिंता जताई थी। पाकिस्तान ग्वादर बंदरगाह तक सड़क बनाने के चीन के महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड परियोजना का हिस्सा है। सलमा बांध के उद्घाटन के वक्त पीएम मोदी ने कहा था,
वी हैव जॉइंट हैंड्स टू बिल्ड रोड्स दैट ब्रिज द डिस्टेंस ऑफ योर कंट्री फ्रॉम जारांग टू डेलारम एंड ट्रांसमिशन लाइंस दैट ब्रिंग पावर टू योर होम्स। नाउ इंडियाज इन्वेस्टमेंट इन द पोर्ट at Chabahar in Iran will give Afghanistan a new route to the world and a new path to prosperity.
भारत और अफगानिस्तान दोनों अब तक चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना का हिस्सा नहीं बने हैं। यहां तक कि चीन ने अफगानिस्तान में एक कॉपर माइन में निवेश की योजना तो बनाई है, लेकिन इस पर अब तक कोई काम शुरू नहीं हो सका। दाऊद आजमी कहते हैं कि इसका एक कारण अमरीका है, जो अफगानिस्तान में सबसे बड़ा विदेशी एक्टर है, और अमरीका और चीन के बीच तनाव की स्थिति होने पर इस रास्ते पर अफगानिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। साथ ही भारत भी अपने हितों के मद्देनजर चीन की इस परियोजना का विरोध करता आया है। वो समझाते हैं कि भारत को अफगानिस्तान से क्या मिलता है, इसे तीन बिंदुओं में समझा जा सकता है।
इंडिया को तीन चीजें मिलते हैं इससे। एक तो इंडिया को इस टेंस रीजन में एक अच्छा दोस्त मिलता है, और फिर दूसरी बात यह है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है व्हेन इट कम्स टू मिलिटेंसी एंड एक्सट्रीमिज्म, और तीसरी बात यह है कि इंडिया को मार्केट एक्सेस चाहिए, तो इससे भी इंडिया को फाइनेंशियल फायदा होता है।
आने वाले दिनों में भी भारत का अफगानिस्तान में निवेश जारी रहेगा। भारत वहां 11 राज्यों में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने, चिमटाला में बिजली घर सबस्टेशन बनाने और साथ ही वहां के राष्ट्रीय टीवी चैनल के विस्तार के लिए अपलिंक और डाउनलिंक सुविधाओं का विस्तार करने में मदद कर रहा है। कहा जाए तो भारत और अफगानिस्तान के बीच की पारंपरिक दोस्ती अब आगे और बढ़ने वाली है, और इससे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में दोनों मुल्कों की स्थिति और भी मजबूत होगी। मानसी दास, बीबीसी दिल्ली।
खबर सच है
अगर बीबीसी पर है।
और खेल की दुनिया में आईपीएल से जुड़ी एक खास खबर है ज्योतिका के पास। तो ज्योतिका, वो खबर क्या है?
जैसे आपने कहा, मैं शुरुआत भी क्रिकेट से करना चाहूंगी। भारत में लोकसभा चुनाव के चलते इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 12वां जो संस्करण को भारत में ही आयोजित, इसका मतलब भारत में ही खेला जाएगा, ऐलान कर दिया गया है इसका। और भारतीय फैंस को अपनी ही जमीन पर आईपीएल के 12वें संस्करण का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। आईपीएल 2019 की शुरुआत 23 मार्च से होगी, जबकि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। अब बात फुटबॉल की। लियोनेल मेसी और लुइस सुआरेस के गोल की बदौलत बार्सिलोना ने स्पैनिश लीग में रविवार रात 2-1 से मैच अपने नाम किया। ये बार्सिलोना का ली लागा में 12वीं जीत है। उसने लीग में सबसे अधिक मैच जीते हैं। और जाने से पहले बात बैडमिंटन की। अवध वॉरियर्स ने सोमवार को श्री कांतिरावा इंडोर स्टेडियम में खेले गए प्रीमियर बैडमिंटन लीग के चौथे सीजन के रोमांचक मुकाबले में चेन्नई स्मैशर्स को 4-3 से हरा दिया है। और वॉरियर्स की जीत के हीरो सोन वानुहू रहे, जिन्होंने निर्णायक मुकाबला जीतकर अपनी टीम को जीत दिलाई।
चलिए, आईपीएल के फैंस के लिए ये बड़ी अच्छी खबर आपने बताई। और कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सिंधुवासिनी से।
बीबीसी समाचार। भारत सरकार ने सामान्य वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण देने से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया है। विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने इस विधेयक का समर्थन किया है, जबकि तमिलनाडु की अन्ना द्रमुक ने इसका विरोध किया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अरदवान ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन की सीरिया में लड़ाई लड़ रहे कुर्द लड़ाकों की सुरक्षा की गारंटी की मांग को अस्वीकार्य बताया है। जर्मनी की पुलिस ने कहा है कि रविवार को गिरफ्तार किए गए एक युवक ने देश के राजनेताओं का डेटा हैक करने और उसे सार्वजनिक करने की बात स्वीकार कर ली है। ऑस्ट्रेलिया ने वादा किया है कि वो इस्लाम त्याग कर थाईलैंड पहुंची सऊदी अरब की युवती की शरण की याचिका को स्वीकार करेगा। डेनमार्क का कहना है कि यूरोपीय संघ ने यूरोप में रह रहे ईरान के असंतुष्ट लोगों की हत्या की साजिश रचने के आरोप में ईरान पर प्रतिबंध लगाए हैं। मिस्र ने गजा के लिए राफा सुरक्षा चौकी को बंद कर दिया है। फलस्तीनी प्राधिकरण के अपने कर्मचारियों को यहां से हटाने के बाद सोमवार को चरमपंथी समूह हमास ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया था। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ दिन भर के इस कार्यक्रम में इतना ही। इस कार्यक्रम के दौरान तकनीकी सहयोग दिया रवि ने। तो अब सारिका सिंह को दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की तमाम खबरें और उनका विश्लेषण जानने के लिए जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ।